कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन सब लोग बोलिए यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरि हरि जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्री राधा श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की श्री श्री गौर निताई की श्री तुलसी महारानी की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज के इस 28 अक्टूबर के विशेष प्रभात जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का संक्षेप में इतिहास ऐसा है, 2003 में कुछ अप्रिय कारणों की वजह से हमारा हॉस्पिटल बंद हो गया था 11 महीने के लिए, और उस समय हमारे कई ऐसे परिवार के सदस्य थे जो हमारी संस्था से बहुत एकनिष्ठ थे, करीब करीब 180 नंबर था उनका, तो उनको साथ में रखना, उनके साथ संपर्क बनाए रखना बहुत आवश्यक था, उनके उत्साह को श्रद्धा को बनाए रखना बहुत जरूरी था। लेकिन अस्पताल बंद हो गया था, केवल सिक्योरिटी यहाँ पर थी और सब जो हमारे एकनिष्ठ कर्मचारी अपने घर में रहते थे। एक समय ऐसा आया कि बीच में श्री प्रभुपाद जी को भी यहाँ से जांगिद के एक फ्लैट में शिफ्ट किया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी भी तो यहाँ पर विराजमान हैं, नीचे हैं, उनको भी वहाँ पर शिफ्ट किया गया। डॉक्टर निकिता चोटाई, प्रेमा मंजरी माता जी, इनके फ्लैट में उसको शिफ्ट किया गया, उनके पास एक टेरेस था बहुत बड़ा। तो सोचा कि सब लोगों को एक साथ रखने के लिए, अच्छी तरह से भगवान की भावना में बनाए रखने के लिए, उनकी आध्यात्मिक साधना, उनका स्पिरिचुअल लाइफ बना रहे अच्छी तरह से, श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी निष्ठा बनी रहे, उनका प्रेम बढ़ा रहे और उनकी आशा भी वैसे ही रहे, निराश ना हो जाए वो, ऐसे अनेक उद्देश्यों के कारण उस फ्लैट पर बुधवार को ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया जागृति। जागृत किसको करना है? अपनी चेतना को करना है। नींद से तो हम उठ जाते हैं लेकिन फिर भी सोते रहते हैं क्योंकि हम माया में रहते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत रहे इसलिए जागृति कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वाभाविक था, वो जप से शुरू हुआ, 6 बजे जप, 7:30 बजे तक 1.5 घंटा जप करना है, 7:30 को फिर प्रवचन होता था उसी फ्लैट पर टेरेस में, ठाकुर जी को बाहर लेके आते थे टेरेस में और सत्संग कार्यक्रम करते थे। और उस कार्यक्रम के बाद में फिर जो जो अपडेट्स होते थे ना हमारे संघर्ष के प्रति, संघर्ष के विषय में क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक हम लोग आ गए हैं, अस्पताल खुलने के लिए कितनी देर है, क्या क्या कायदे से हमारा युद्ध चल रहा है, इसके बारे में हम लोग अपडेट दिया करते थे। फिर सब लोगों को प्रसाद बांटते थे, उसमें से बहुत लोगों को बहुत सारी सेवाएं भी थी इस संघर्ष में, तो सब सेवाएं भी हम बांटते थे, हमारे पालघर के और थोड़ी बालेश्वर के और मीरा रोड के सभी भक्त लोग एकत्र होते थे। बहुत अनोखा अद्भुत अनुभव था वो, जिसमें इतने सारे एकनिष्ठ लोग जो है अपने एकनिष्ठता जताने के लिए, अपने भगवान के ऊपर श्रद्धा को बनाए रखने के लिए दूर दूर से एकत्र होते थे। घनघोर वर्षा भी होती थी क्योंकि वो उसी समय था सब कुछ, उसमें भी सब लोग एकत्र होते थे और श्रील प्रभुपाद जी की दया से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर चलता रहा 1 साल तक। फिर 17 अगस्त को 2004 को हॉस्पिटल वापस शुरू हुआ, उसका काम शुरू हुआ, तो सारे लोगों को फिर वापस यहाँ पर काम पे लिया गया, 20 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया गया। तो हमने सोचा कि इतना सुंदर कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में भक्तों को इतना प्रेरणा दिया, भक्तों को एकत्र रखा, उनकी निष्ठा को बनाए रखा, उसकी निष्ठा को बढ़ाया, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो उसमें थे, हरे कृष्णा। अच्छा हुआ मैंने आपको ये कहानी बताई, क्योंकि बहुत लोग उसके बाद में हॉस्पिटल ज्वाइन किए हैं, जो संघर्ष का समय था उसमें बहुत कम लोग थे, अभी जो बैठे हैं इसमें, इसमें से भी और भी अधिक लोग हैं जो उसमें थे। तो वही सुंदर कार्यक्रम जिसने आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से सब लोग को एकत्र बनाए रखा, बांध के रखा प्रेम के बंधन में। तो ये कार्यक्रम फिर पुनः शुरू किए अस्पताल में भी, उसको जारी रखा गया ताकि वही भावना लोगों के अंदर बनी रहे। क्योंकि भक्तिवेदांत अस्पताल जो है वो एक हॉस्पिटल विद डिफरेंस है, एक अलग अस्पताल है। हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हमारा अस्पताल बहुत बड़ा है, कि हमारे से 10 गुने बड़े 15 गुने बड़े हॉस्पिटल दुनिया में, भारत में, मुंबई में उपलब्ध हैं। हमारे से कई अधिक सुविधाएं अनेक अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन इस अस्पताल में एक ऐसी चीज है जो बाकी किसी अस्पताल में नहीं है, वो है आध्यात्मिक वातावरण, वो है स्पिरिचुअल केयर। और हमारे गुरुदेव ने भी स्पष्ट कहा था कि हमारा अस्पताल कोई विशेष बात नहीं है भौतिक दृष्टि से, लेकिन एक विशेष अद्भुत चीज है हमारा अस्पताल जब तक उसमें स्पिरिचुअल केयर नियमित रूप से प्रचलित है। और अगर स्पिरिचुअल केयर हमारा अगर कम होता है या बंद हो जाता है तो हमारा अस्पताल एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल बन जाएगा, उसमें कोई विशेष बात नहीं रहेगी। तो इस आध्यात्मिकता को बनाए रखने में यह जागृति कार्यक्रम बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए आप लोगों को विनती है कि यह विशेष जागृति कार्यक्रम क्यों रखा गया, क्योंकि जो मुझे अभी भी याद है जब मैंने सबसे पहले ये जागृति कार्यक्रम लॉन्च किया था, उसमें सबसे पहले जब विशेष जागृति किया था तो वैदेही माता जी बताएंगे कि ये हॉल जो है ना वो एकदम खचाखच भरा हुआ था, पूरा एक बैठने को भी जगह नहीं थी उसके अंदर। और सब लोगों ने फीडबैक दिए थे कि इतना अच्छा वातावरण था, इतनी अच्छी लहरें थी उसके अंदर, इतना अच्छा प्रेरणा मिली थी, इतना आनंद आ रहा था उस समय। तो ये विशेष जागृति कार्यक्रम इसलिए किया गया कि जागृति कार्यक्रम में संख्या कम कम होने लगी लोगों की, तो उसको एक बार बुश देने के लिए विशेष जागृति कार्यक्रम बनाया। उसमें एक बहुत सुंदर तुलसी, लोगों को बैठने की व्यवस्था, डेकोरेशन सब किया गया। और पहला कार्यक्रम जो था उसका इतना अद्भुत रिस्पॉन्स था कि हम आपको कह नहीं सकते, लेकिन आप बता सकते हैं कि पहले अद्भुत कार्यक्रम का, अद्भुत रिस्पॉन्स का रहस्य क्या था, कोई बता सकते हैं? Anybody can tell? प्रसादम, और कोई? Maybe वैदेही माता जी बता सकती हैं कि पहले कार्यक्रम का अद्भुत होने का कारण क्या था? लेक्चर, पता नहीं क्या लेक्चर था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे विचार से वो जो कार्यक्रम था, लेक्चर किसने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा मुझे याद नहीं है, सॉरी। मुझे जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइक हो गई उस कार्यक्रम के यश की, वो थी आप सबकी उपस्थिति। इस विशेष जागृति कार्यक्रम को विशेष क्या बनाता है? आप लोगों की उपस्थिति। जब आप आते हो ये कार्यक्रम विशेष हो जाता है, नहीं तो वैसे ही हम लोग जब करते रहते, घर पे भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, और एकत्र होते हैं, भागवतम सुनते रहते हैं घर पे। विशेष बात यह है कि एक प्रोजेक्ट के, जो प्रोजेक्ट अस्पताल प्रोजेक्ट है, मेडिकल प्रोजेक्ट है, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, आया बॉयज और अनेक प्रकार के लोग काम करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट केवल भगवान के संतुष्टि के लिए बनाया गया है, लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है। वो प्रोजेक्ट के अंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं जो किसी भी अस्पताल में नहीं होते। आपने कभी सुना है क्या गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा और तीर्थ यात्रा किसी अस्पताल से हो रही है? बड़ी अद्भुत चीज है, लोग बड़े आश्चर्य करते हैं सुनकर भी, ऐसे भी हो सकता है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल के एकत्र होकर रोटी बनाते हैं, कभी समोसा बनाते हैं, कभी जलेबी बनाते हैं गोवर्धन पूजा के अंदर। ऐसा अद्भुत वातावरण केवल इसी अस्पताल में उपलब्ध है, वो गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा है। तो आज भी वही सत्य है, ये जागृति कार्यक्रम यशस्वी है जब तक आप लोग उसमें आते हैं, और जितनी बड़ी संख्या में आते हैं उतना वो अधिक यशस्वी है। और आध्यात्मिक वातावरण कैसे बनता है, या कोई भी वातावरण कैसे बनता है? अच्छी बिल्डिंग से, अच्छे पेंटिंग से, अच्छे रंग देने से, अच्छा शेप से नहीं बनता है वो। कोई भी वातावरण जो है वो लोगों से बनता है। वो खराब भी अगर वातावरण है तो भी लोगों से बनता है, और अच्छा भी वातावरण है तो भी लोगों से बनता है, और अगर आध्यात्मिक वातावरण भी है तो भी वो लोगों से ही बनता है। जब लोग आते हैं तो अपनी चेतना को साथ में लेके आते हैं, और अपनी चेतना को साथ में लेके आके जब सब लोगों की चेतना इकट्ठा होती है तो एक एकत्रित चेतना का एक एकत्रित वातावरण निर्माण होता है, जो एकत्रित वातावरण सब प्रत्येक व्यक्ति को पोषण देता है। मेरे आज यहां आने का मेरा लाभ क्या है? क्योंकि मुझे आज यहां पर बैठे हुए 150 लोगों का जो भक्ति भाव है उसका एकत्रित लाभ मुझे मिल रहा है। ये मेरा स्वार्थ है, मेरा निजी बेनिफिट है, और वही बेनिफिट आप सब लोगों का भी है। जो भी व्यक्ति यहां पर बैठे हैं उनको अभी इस वक्त सभी के एकत्रित आध्यात्मिक चेतना का लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके आत्मा का पोषण हो रहा है केवल एकत्र होने से। इसलिए भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त एकत्र होते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरे याद करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरी सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, जिस काम में हम लगे हुए हैं उस काम की दिव्यता को अप्रिशिएट करते हैं, उधर ही मैं हूं, तत्र तिष्ठामि नारद, उधर ही मैं रहता हूं, और कोई वैकुंठ में रहता नहीं हूं मैं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं वहीं रहता हूं जब मेरे भक्त लोग, मुझे चाहने वाले लोग, मुझ पर श्रद्धा रखने वाले लोग मेरे विषय में चर्चा करने के लिए, श्रवण करने के लिए, नाम पुकारने के लिए एकत्र होते हैं। तो इसलिए आपको विशेष धन्यवाद है, आपने यहां आकर इस कार्यक्रम की शोभा रौनक बढ़ाई है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जितना 2003 साल में पावरफुल था उतना आज भी पावरफुल है। इसका जो पोटेंसी है ना, जो इसके अंदर जो शक्ति है आपको पोषण देने की, वो आज भी उतनी है। वो मेरे ख्याल से आज उसका जो शक्ति है आज, मतलब इस समय, इस काल में, वो पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय कुछ 180 लोगों को एकत्रित रखने के लिए उसको बनाया गया था। आज हमारी परिवार की संख्या पता है कितनी है? कितने लोगों को पता है कि हमारा परिवार आज कितना बढ़ चुका है? हाँ, 900, मतलब एग्जाम 5 गुना हो गया, 180 × 5। और बहुत ज़्यादा ये मुमकिन है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि ये संख्या भी बढ़ने वाली है, इसमें कोई कम होने का कोई चांस नहीं, बढ़ने वाला ये। तो ये बढ़ेगा तो भी अच्छे के लिए बढ़ेगा, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा के लिए बढ़ेगा, हमारी तरफ से सेवा हो जाए इसके लिए बढ़ेगा, हमें दिव्यता प्राप्त कराने के लिए बढ़ेगा। हाँ, सब लोग जरा मोबाइल अपना स्विच ऑफ, साइलेंट, जो भी करना है कर लीजिए। तो ऐसी शक्ति है इसके अंदर, और उसमें अभी मीरा रोड के जो अस्पताल में काम नहीं करते लेकिन भावना से जुड़े हुए हैं अस्पताल से, वो भी लोग इसमें आते हैं। लेकिन याद रखना कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अस्पताल से संबंधित डॉक्टरों को, नर्सों को, कर्मचारियों को, परिवार के सदस्यों को एकत्रित करने के लिए बनाया गया है। ये कार्यक्रम करने से ये अस्पताल की जो वास्तु है, हाँ, जैसे हर एक चीज होती है ना, पर्वत भी एक व्यक्ति है, नदी भी एक देवी है, कुंड सरोवर जितने भी तीर्थ स्थान वन वृंदावन के हैं, जितने पवित्र स्थान है, वो सब एक व्यक्ति है जो भगवान की सेवा करने के लिए उस पर्वत के रूप में, नदी के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे अस्पताल का भी एक व्यक्तित्व है, इस अस्पताल हैज गॉट अ पर्सनैलिटी, इस वास्तु की एक व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व है, और वो वास्तु जो है वो प्रभुपाद के द्वारा प्रतिनिधित्व उसका होता है। प्रभुपाद जी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सनैलिटी, जिनकी कृपा से हम लोग यहां बैठे हैं, जिनके नाम से हम लोग यहां बैठे हैं, जिनकी उपदेश के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार यहां पर कार्य हो रहा है, जिनकी शिक्षाओं के अनुसार यहां पर सेवाएं होती रहती हैं, उस व्यक्तिमत्व को इस कार्यक्रम से पोषण प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। इस अस्पताल की जो शक्ति है लोगों को एक तो बीमारियों से मुक्त करने की, दुख से दूर करने की, और आध्यात्मिक पोषण करने की, इस वास्तु में, इस प्रोजेक्ट में एक शक्ति है, बहुत दिव्य शक्ति है। वो हर एक व्यक्ति यहां पर प्रवेश करते ही उस शक्ति का अनुभव करता है कि कुछ है यहां पर, कुछ मुझे अंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है, कुछ दिव्यता का अनुभव हो रहा है, कुछ विश्वास प्राप्त हो रहा है, कुछ डर सा निकलता जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कि वास्तु में विशेष शक्ति है, और वो जो शक्ति है वो आप लोगों के यहां पर एकत्रित होकर जप करने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से, सेवा करने से बढ़ती है। मेरा इस बात पर 200% विश्वास है कि जितने हद तक हम लोग अपना अपना सुबह की नींद, अपना अपना सुबह का कार्यक्रम एक हफ्ते में एक बार बाजू में रखकर इसको प्रधान रूप बनाकर जब एकत्र होते हैं तो आपके द्वारा इस यज्ञ में एक एक्स्ट्रा आहुति प्राप्त होती है। हमारे यज्ञ में कभी 4 लोग बैठते हैं, कभी एनुअल में 30 लोग बैठते हैं, है ना, ज्यादा आहुति पड़ती है, ज्यादा भक्ति भाव अर्पण होता है उसके अंदर, यज्ञ की भव्यता बढ़ती है कि नहीं, इतना बड़ा यज्ञ कुंड होता है, फिर और 25 लोग बैठ जाते हैं, कभी कभी दीक्षा में 200 लोग बैठ जाते हैं, तो यज्ञ की भव्यता, यज्ञ की शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति देने की बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जितने अधिक लोग इसमें कार्यक्रम में आकर अपना समय जो निजी काम के लिए यूज कर सकते थे वो छोड़कर एकत्र होते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य एकत्र होकर कुछ एकत्रित कार्य कर रहे हैं, तब इस प्रोजेक्ट की जो शक्ति है लोगों को लाभ देने की वो बढ़ जाती है। प्राणिनाम आरती नाशनम न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। हमारा मूल उद्देश्य यहां का यह है लोगों का दर्द निवारण करें। सब लोग पीड़ित है दुनिया में, सब लोग अपने अपने पुराने कर्मों के द्वारा, अनेक जन्मों के संचित के द्वारा यहां दुख भोग रहे हैं, प्रकृति का भोग रहे हैं, दूसरे जीवों के द्वारा भोग रहे हैं, मन के द्वारा जो महत्वाकांक्षा है उसके द्वारा दुख भोग रहे हैं, रोग हो रहा है उनको, बीमारी हो रही है, बुढ़ापा हो रहा है, भोग लेने की इच्छा के बीच में बाधाएं आ रही है, लोग कष्ट परिवार के तरफ से कष्ट भोगते हैं, कई प्रकार के कष्ट में सब लोग तड़प रहे हैं, संसार दावा नलडील लोका। तो हमारा प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है कि लोगों का दर्द निवारण करे, या निवारण नहीं कर सकते तो कम करे कम से कम। जैसे कि जब फोड़ा होता है ना बड़ा कोई, तो हम लोग उसमें फुंकर लगाते हैं, हवा देते हैं उसके ऊपर, उसमें को उसमें ठीक नहीं होता है वो, लेकिन थोड़ा इधर आराम तो महसूस करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं उसमें। तो इससे ये कार्यक्रम से हमें हमारी शक्ति जो है लोगों का दुख निवारण करने की वो बढ़ जाती है, और साथ साथ में हमारे अस्पताल में रोगों का निवारण करने के साथ साथ आत्मा की जागृति, आत्मा को पोषण भी प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल केयर, जब तड़प रहा है आदमी किसी बहुत भयंकर बीमारी से तो उसको काउंसलिंग मिलता है, उसके रोग होते हुए भी उसको रोग प्रतिकार करने की शक्ति उसके अंदर निर्माण होती है, दुख हो रहा है बहुत फिर भी उसको रोग को सहन करने की शक्ति निर्माण होती है। एक है रोग जो आपको भोगना ही है, लेकिन एक शक्ति वो होती है जो रोग होते हुए भी आपको जीवन को चलाने में प्रेरणा देती है, है ना। और भी ऐसा नहीं कि भाई मर ही जाएंगे, अभी क्या करेंगे, अभी टाइफाइड हो गया अभी मर जाएंगे, ऐसे भी कोई लोग बोल सकते हैं। और एक व्यक्ति बोल सकता है उसको भयंकर जानलेवा कैंसर हो गया, फिर भी वो बोलेगा कि नहीं, जितना भी क्षण मेरे पास बचे हैं मैं भगवान को याद करूंगा और इस कैंसर से मरूंगा, लेकिन भगवत धाम में पाने का प्रयास करूंगा। ये जो शक्ति अंदर से होती है ना, प्रेरणादायक शक्ति, ये शक्ति इस प्रोजेक्ट में बढ़ जाती है जब हम सब लोग एकत्र होते हैं और एकत्र होकर इस प्रोजेक्ट से अपने आप को परिचित करते हैं कि यस, मैं इस प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ हूं, आई एम कनेक्टेड विद दिस प्रोजेक्ट, मैं इस मिशन में, इस प्रयोजन में जुड़ा हुआ हूं जो लोगों का दर्द निवारण और आध्यात्मिक पोषण करने के वादे से बद्ध है। हमारा वादा क्या है, हम आपका रोग निवारण करेंगे, आपका दर्द निवारण करेंगे, दुख दूर करेंगे, और साथ में आपको भगवान का परिचय करेंगे, उनके साथ में आपको जोड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा मिशन है, और ये मिशन को बहुत ज्यादा पुष्टि मिलती है जब हम इस कार्यक्रम में एकत्र होते हैं। हमें कभी समझता नहीं है, क्या है घर में भी कर लेंगे, उधर क्या जाना है हॉस्पिटल में, लेकिन एकत्र होने से एक और एक दो नहीं होते, एक और 11 हो जाते हैं। ये एकत्र होने का एक शक्ति है, टुगेदरनेस इज पावर। खड़े एकत्र होने से भी एक बहुत ज्यादा अच्छा वातावरण निर्माण होता है। तो इसलिए फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमको सुबह आने को नहीं होता है, हमारे बच्चों को डब्बा बनाना होता है, ऐसा होता है, तो एम्प्लॉयज की तरफ से रिक्वेस्ट आई हमारे लिए दोपहर का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो फिर मंगलवार का कार्यक्रम शुरू किया, तो फिर ये संध्या जागृति और प्रभात जागृति के रूप में रूपांतरित हो गया। दोपहर के कार्यक्रम में अभी भी 70-80 लोग आते हैं, बहुत अच्छा वातावरण रहता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो तो केवल वार्ड बॉय और नर्सेस के लिए, ऐसा लोगों ने अपने आप ही सोच लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्पताल में ऐसा एक अलिखित नियम है कि हर एक व्यक्ति को हफ्ते में एक बार एक जागृति कार्यक्रम अटेंड करना चाहिए अपने आध्यात्मिक पोषण करने के लिए। तो अगर आप सुबह नहीं आ सकते तो आपको दोपहर में जाना है, मतलब दोपहर में मैनेजर्स, ऑफिसर्स, बाकी नॉन मेडिकल, मेडिकल सभी कर्मचारियों को, पैरामेडिकल सभी कर्मचारियों को एक बार हफ्ते में आकर ऑन ड्यूटी अपने आत्मा को पोषण करने के लिए एकत्र होना है और अपने मिशन को याद करना है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। और मेरे विचार से इस कार्यक्रम में हमारा परम सौभाग्य है कि मंदिर में जिनका प्रवचन सुनने के लिए तीन तीन महीने वेट करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि मंदिर में इतने महारथी लोग रहते हैं, सबको प्रवचन करने का मौका होता है वहां पर, तो 38, 40, 45 दिन के बाद में उनका एक नंबर आता है लेक्चर देने के लिए, लोग उनको बहुत चाहते हैं। ऐसे हमारे प्रिय इस ग्रेस श्यामानंद प्रभु यहां पर हर हफ्ते प्रवचन देते हैं। 2007 में उन्होंने कुंती की प्रार्थनाओं के ऊपर प्रवचन शुरू किया था, एक अध्याय भागवतम में है, और आज 8 साल पूरे हो गए अभी भी वो प्रवचन दे रहे हैं। पता नहीं सैकड़ों प्रवचन दे चुके होंगे एक अध्याय के ऊपर, इतना उनके पास आध्यात्मिक भंडार है और इतना अस्पताल से संबंधित बहुत सुंदर बात वो बताते हैं कि सारा लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा जब 1986-87 साल में हमने मेडिकल कैंप शुरू किए थे, 1990 में जब हमारा मेडिकल मोबाइल क्लिनिक आया था और हमने झोपड़पट्टियों में और गांव-गांव में मेडिकल कैंप करना शुरू किया था, बहुत इतिहास की बात है वो, आज उसको 25-30 साल पूरे हो गए। उस समय इस ग्रेस श्यामानंद प्रभु और इस ग्रेस गोविंद प्रभु नए नए मंदिर में ज्वाइन किए थे ब्रह्मचारी के रूप में, बहुत ही 18-20 साल की उम्र थी उनकी। उस समय वो हमारे कैंप में प्रवचन करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए और कीर्तन करने के लिए झोपड़पट्टियों में आया करते थे नियमित रूप। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें इंडक्शन में। तो हमारे प्रोजेक्ट से वो जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट की भावना को समझते हैं और विशेष रूप से यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर श्रीमद् भागवत का पूरा अनुवाद उन्होंने किया है, भगवद गीता का पहले किया था, अभी और भी अनुवाद शास्त्रों के यहाँ पर हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में यहाँ पर रहते हैं। हमारे अस्पताल के मैनेजमेंट की कोर टीम है, उसमें बैठते हैं, उसमें मार्गदर्शन करते हैं और विशेष रूप से बुधवार के सुबह यहाँ पर हमें बहुत सुंदर, बहुत पोषक ऐसा आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं। ये हमारा परम भाग्य है। कभी कभी हमारे पास जो हमारा भाग्य होता है उसको हम भूल जाते हैं, जो हमारे पास नहीं है और दूर है उसके पीछे तड़पते रहते हैं हम लोग, और जब वो दूर वाला भाग्य हमारा हो जाता है तो उसको बाजू में रख के जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जब तक कोई सुंदर स्त्री हमें पसंद है, बहुत लड़की हमारी पत्नी होनी चाहिए वो, इसलिए वो संघर्ष करते हैं, झगड़ा करते हैं, कष्ट करते हैं, और एक बार उसकी शादी हो गई फिर पड़ोसों को देखना आरंभ कर देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इमीजिएटली जो बहुत बढ़िया चीज हमारी हो जाती है उसके बाद में फिर जो हमारी नहीं है उस पर हमारी आंख जाने लगती है। दिस इज आवर नेचर, अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो ये विशेष जागृति, इसके लिए विशेष प्रयास करते हैं हम लोग। आप लोगों को पता नहीं होगा ये सब जो आपके सामने अभी प्रस्तुत है यहाँ पर, जो भी दिख रहा है छोटा मोटा और बाकी की व्यवस्था है, इस करने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों ने मैसेजेस दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, बहुत लोगों ने फोन किया किसी किसी को, आइए आप, केवल आपको आकर लाभ लेना है, हम लोग सेवा करने को तैयार है आपकी, आप आइए, एकत्र आइए, भगवान को पुकारिए। और ये विशेष जागृति को और विशेष प्रयास करने का कारण क्या है, क्योंकि कार्तिक महीना है। समय जो होता है ना, भगवान कहते हैं ये समय मैं हूं, कालोस्मि, और समय का एक स्वभाव है कि वो सब कुछ हमसे छीन लेता है। लेता है कि नहीं, हमारी जवानी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पैसा, हमारा प्रेम लोगों के साथ में जो है, हमारा हेल्थ, जो सब कुछ हमारे समय के साथ नष्ट होने नजर आता है। आज है, हम बोलते हैं आज है तो कल नहीं, ये नश्वरता जो है समय का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो उसके साथ साथ जो भगवान स्वयं समय है वो भी बहुत दयालु होकर कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। दैट सेम टाइम विच टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस ऑल्सो कम्स टू अस वेरी मर्सीफुली समटाइम्स इन बिटवीन। जैसे हर रोज वो समय आता है ब्रह्म मुहूर्त के रूप में, जो हमें आध्यात्मिकता प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करता है, जप करने के लिए, भगवान से जुड़ जाने के लिए। फिर वही समय 15 दिन में एक बार एकादशी के रूप में प्रकट होता है, और आपको आध्यात्मिकता देने के लिए और आपको भगवान से जुड़ने के लिए। फिर वो एक साल में चतुर्मास के रूप में प्रकट होता है, ताकि आपको भगवान से आप जुड़ सके। चतुर्मास के समय सारे जितने तीर्थ हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, जितने भी आध्यात्मिक जगह हैं, वो सब ब्रज में आकर, मायापुर में आकर, जगन्नाथपुरी में आकर आश्रय लेते हैं। इसलिए प्रथा है कि ये चतुर्मास में, खास करके कार्तिक मास में, ब्रज परिक्रमा, पुरुषोत्तम धाम परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा, ये सब क्यों निकलते हैं? क्योंकि उस समय पर सारे धाम जो हम चाहते हैं वहां जाकर उसकी कृपा प्राप्त करें, वो उसमें आकर निवास करते हैं, एक ही जगह पर आपको सारे तीर्थ लाभ देते हैं। तो चतुर्मास का समय है, उसमें श्रावण है, उसमें भाद्रपद है, उसमें अश्विन है, उसमें कार्तिक है, इन चार मास में बहुत शक्ति है आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने की। उसमें से भी कार्तिक जो है वो सबसे शक्तिशाली है। और इस साल में और एक भाग्य था हमारा, और एक काल का और एक दयालु प्रतिनिधित्व करने वाला महीना वो था अधिक मास, वो कार्तिक से भी अधिक पावरफुल है। वो हमने इस जो भागवत सप्ताह किया था इसमें 11 दिन का, उसमें उसका महात्म्य बताया था। तो वही समय अभी आपके सामने कल से शरद पूर्णिमा से प्रस्तुत है दयालु स्वरूप में। भगवान का एक ऐसा अनोखा, भगवान जानते हैं कि हम सब लोग यहाँ दुख भोग रहे हैं, शरीर धारण करके यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, और कष्ट बढ़ते जा रहा है जब कलयुग बढ़ते जा रहा है, तो और दयालु होते जाते हैं, और कृपालु होते जाते हैं। तो कार्तिक महीने में भगवान की इतनी कृपा है कि इसका नाम दामोदर मास है। हाँ, शरद पूर्णिमा से वो कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। कार्तिक पूर्णिमा में हम तुलसी विवाह का उत्सव संपन्न करते हैं। तो ये 30 दिन का कालावधि जो है उसको वैष्णव कार्तिक कहते हैं, क्योंकि वो पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है, और कोई लोग उसको एकादशी से एकादशी फॉलो करते हैं। तो ये दोनों तरीके सही हैं। और इस ये महीने में इतनी महिमा है, आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मैं विनती करता हूँ, जो भी आप सुनेंगे बाकी लोगों को बताइए जो यहाँ पर नहीं आए हैं, ताकि उनको भी इस कार्तिक का इतना अनोखा दिव्य अनगिनत लाभ जो है वो सबको प्राप्त हो जाए। हमारा प्रयास क्या है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में कि यहाँ पर पेशेंट के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, स्टाफ के रूप में, मेहमान के रूप में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, मिलने वाले के रूप में, स्टाफ के रूप में, जितने भी लोग आए उनको यहाँ का हर एक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी समय, कई अलग अलग अनोखे तरीकों से, हाँ, क्रिएटिव प्रोसेस से यहाँ पर लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिले। तो कार्तिक महीने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस महीने में भगवान ने ऐसी मधुर लीलाएं की है, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, कि इन कथाओं को सुनकर हम दिव्य प्रगति कर सकते हैं। मैं आपको खाली बताऊंगा पूरी कहानी, तो मैं अभी शायद मंगलवार को ऐसे कार्यक्रम में बताने का प्रयास करूंगा, हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन एन्यूमरेट करना है तो सबसे पहले शुरुआत होती है इसके महीने की शरद पूर्णिमा से, जिस दिन गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, निजी स्वार्थ को, देश काल पात्र में जितनी भी स्वार्थी वस्तुएं थी जो कनेक्टेड थी अपने स्वार्थ से, सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। बीच रात में जाकर भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। भगवान ने परीक्षा भी किया, फिर भी भगवान की परीक्षा में अव्वल मार्क से पास हो गए वो, और भगवान ने उनको जीव के लिए जो सर्वोच्च आनंद जीव अनुभव कर सकता है भगवान के संबंध में, वो है रासलीला। वो भगवान ने उनका रासलीला किया। एक ब्रह्मा की रात का समय जो है वो विश्व की, पृथ्वी की एक रात में समेट कर लिया, और इतना लंबा समय तक वो दिव्य आनंद जो जीव को जरूरी है, जीव के लिए अच्छा है सबसे, और सर्वोत्तम है, वो आनंद जो है रासलीला का, वो आदान प्रदान प्रेम का भगवान ने इस रात को प्रकट किया। उसके बाद में 3 तारीख को राधाष्टमी, राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। उस दिन भगवान ने अरिष्टासुर नाम के बैल का वध किया। बैल का वध करने से गोपियों ने उनके संग करना मना किया, उनको कहा कि सभी तीर्थों में आपको स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने एक कुंड बनाया, उसका नाम है श्याम कुंड। सारे तीर्थों ने उसे आश्रय लिया, जल दिया, तीर्थ पर्वत नदी कुंड वन उपवन जगह सब वहां प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने स्नान करके वो गोपियों की इच्छा के अनुसार अरिष्टासुर बैल जो धर्म का प्रतीक है उसको मारने के पाप से मुक्ति प्राप्त की। फिर उन्होंने कहा कि आपसे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में हमसे विवाद किया है, आपको भी सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। तो फिर राधा रानी ने कुंड बनाया, उसका नाम है राधा कुंड, जो आगने वाले अष्टमी के दिन उसका आविर्भाव रात को बीच में होता है। सभी तीर्थों ने, सभी नदियों ने दोबारा इस कुंड में प्रवेश किया, और भगवान ने ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करेगा वो मुझे राधा रानी इतना ही प्रिय हो जाएगा। राधा रानी नहीं, स्वयं जो इसका जल है वो राधा रानी का द्रव रूप मेरे लिए प्रेम है, ये कोई साधारण जल नहीं है, ये उनका प्रेम जो मेरे प्रति है वो द्रव रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है, और जो भी इस जल का स्पर्श, दर्शन, चिंतन, स्नान जो भी कुछ करता है वो मेरे लिए उतना ही प्रिय हो जाता है जितना राधा रानी मुझे प्रिय है। और उसको स्नान करने से, स्पर्श करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से राधा रानी का जो मुझ पर प्रेम है वो प्रेम उस जीव को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वरदान भगवान ने दिया है। उस दिन वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड में दूध की धार निकलती है रात को, वो देखने के लिए वहां पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और जम करते हैं उसके अंदर दूध को देखते हुए। उसके बाद इसी महीने में जो फेमस लीला है भगवान की, भगवान ने भगवान को यशोदा माई ने बांधा बड़े प्रेम से, जो सब विश्व को जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिविध ताप में, त्रिविध गुणों में बांध के रखते हैं, उसे भगवान, उसी भगवान को यशोदा माता ने बड़े प्रेम से बांध के रखा। उसको आज भी हम गाते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ये बाल लीला भगवान की बड़ी लोभक है, बड़ी मनोहर है, बड़ी मन को आकर्षित करने वाली है। तो यह लीला भी इसी महीने में हुई है। इस लीला पर यह महीने का नाम भी पड़ा है, दामोदर महीना। लेकिन विशेष बात यह है, महीना तो दामोदर जी का है, लेकिन दामोदर जी के महीने में जो कुछ आध्यात्मिक काम करते हैं उसको फल देती है उर्जेश्वरी देवी राधा रानी। उर्जेश्वरी देवी राधा रानी इस सारे कार्य को निजी प्रेम से फल देती है। फिर इस महीने में भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, उसके पहले गोवर्धन की पूजा की। हमारे कैलेंडर में आता है ना गोवर्धन पूजा, दिवाली का दूसरा दिन, तो भगवान ने स्वयं गोवर्धन की पूजा की, भगवान ने स्वयं सारा भोजन स्वीकार किया, भगवान ने स्वयं सबसे पहली जो परिक्रमा है गोवर्धन की वो इस महीने में भगवान ने की, जब भगवान 7 साल के थे। उसके बाद 7 दिन बहुत भयंकर वर्षा हुई, तो भगवान ने पहले दिन ही उसको उठाया, उसके बाद में भगवान ने नीचे रखा उसको। फिर इंद्र को उन्होंने क्या कहते हैं, दंड दिया, जो भी कुछ बोलना था वो बोल दिया। ऐसे इस महीने में अनोखे उत्सव हुए हैं, अनोखे घटनाएं हुई हैं, अनोखी लीला भगवान ने की है। आखिर में इस महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, कई प्रकार की लीला है। इसी महीने में कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया है, नरक चतुर्दशी के दिन। इसी महीने लक्ष्मी जी का पूजन होता है। इसी महीने में भैया दूज आती है, जिसका मतलब यह है, यमद्वितीया कहते हैं उसको, यानी कि इस महीने में भाई और बहन हाथ पकड़कर जमुना जी में डुबकी लगाते हैं और केवल बहन के ही हाथ से बनाया हुआ भोजन प्राप्त करते हैं। उसमें वरदान दिया गया है कि इस दिन जो बहन के हाथ का भोजन प्राप्त करेगा वो अमृत का आस्वादन करेगा, ऐसा महिमा है इस महीने का। तो मैंने देखा है बुढ़े बुढ़े 70 साल का बहन, 75 साल का भाई एकदम बुढ़े हो गए, वो भी हाथ पकड़ के जमुना जी में डुबकी लगाते और जाके फिर बहन भाई को बड़े प्रेम से भोजन कराती है, भगवान का प्रसाद वो प्राप्त करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा महिमा बताया गया है। तो यम द्वितीया है इस महीने में, ऐसे कई उत्सव इस महीने में है। भगवान ने इस महीने को ऐसा संपृक्त बना दिया है कि जो भी इस महीने में व्रत करेगा वो केवल इस महीने का व्रत करने से भगवत धाम को प्राप्त करने में योग्य हो जाएगा। बाकी जिस महीने में हमने जितने सारे व्रत किए हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी बहुत सारे व्रत करते रहते हैं। कोई शुक्रवार का करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई गणपति का करता है, कोई शंकर जी का करता है, कुछ कुछ मन में क्या क्या रख रख के करते हैं। बहुत सारे व्रत उपलब्ध हैं दुनिया में, हर प्रकार का मॉल उपलब्ध है लेकिन अगर आपने पहले कभी व्रत किए हुए हैं और उसका भी फल चाहते हैं, तो अगर कार्तिक का व्रत करेंगे तो बाकी सारे व्रतों को फल प्राप्त होता है, और बाकी सारे व्रत करेंगे और कार्तिक में व्रत नहीं करेंगे तो बाकी सारे व्रत नलीफाई हो जाते हैं। सोच लीजिए, ये कार्तिक महात्म्य में लिखा गया है, कार्तिक महात्म्य का ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। तो कार्तिक में 2 चीजें हैं, एक है व्रत करना और एक है भगवान का दीपदान। तो पहले हम दीपदान के बारे में बताते हैं। दीप के बारे में बहुत सुंदर विस्तार में वर्णन स्कंद पुराण में आया है और हमारे सनातन गोस्वामी जी ने भी लिखा है कार्तिक महात्म्य, उसमें भी लिखा गया है, वो बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ है उसके अंदर। एक दीपक कार्तिक में भगवान को अर्पण करने से खरबों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जो हमें यहां बांध के रखते हैं। एक दीपक भगवान को अर्पण करते समय ऐसा कोई पाप आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, सब पाप भाग जाते हैं। ऐसा कोई पाप हम सोच नहीं सकते कि हम करेंगे जो कार्तिक के दीपक के सामने खड़ा रह सकता है। ऐसा कहा गया है कार्तिक का दीपक जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि वो न केवल अपने खरबों जीवन के पापों को नष्ट करता है लेकिन आपके हृदय में प्रेम का दीपक बड़ा प्रज्वलित कर सकता है। वो इसलिए हमारी संस्कृति में कैसा है आपको पता भी नहीं होगा, तो भी दिवाली में सब लोग दीप कर लगाते हैं, घर पे आंगन में सब जगह दीप लगाते हैं, दीपों की माला लगाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अगर संस्कृति को पालन करेंगे तो अनायास ही आपको ये दिव्य लाभ होते रहेगा, लेकिन अगर जानकारी करके हुए प्राप्त करेंगे तो उसका और गुना आपको लाभ मिलेगा। इफ यू नो द थिंग्स एंड परफॉर्म समथिंग थिंग्स, आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये दीपक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल घी में आपको वो बाती को डुबाना है और भगवान विष्णु का जो कितना भी स्वरूप है, नरसिंह भगवान है, राम भगवान है, परशुराम है, मत्स्य कूर्म वराह वामन श्री कृष्ण बलराम, हाँ जी भी आपको जितने भी विष्णु के तिरुपति बालाजी पंडरपुर विठ्ठल जितने भी आपको पता है, वो विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप अर्पण करेंगे तो ये सारे दिव्य लाभ आपको एक साथ मिलेंगे, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दाप एक दीप दान के अंदर भगवान ने सारा निचोड़ भर दिया है इस महीने में। इस महीने में जितने दीपक आप अर्पण करेंगे उसका जितना कलेक्टिव प्रकाश होगा, वो सारा प्रकाश जो है जब आप भगवत धाम के रास्ते पर रहेंगे तो वो प्रकाश आपको प्रकाश देगा, उस रास्ते को रोशन करेगा। इस महीने में विष्णु के मंदिर में जाकर जो दीप माला लगाएंगे, अर्पण करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, जाके खुद अर्पण करेंगे, उसके प्रकाश से हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित होगा। इतना सारा लाभ इस केवल एक दीप दान से है। अगर आप किसी दूसरे का दीप जलाकर उसको देंगे तो भी आपको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ पुराने युगों में करने के लिए कई साल लगते थे, कई साल, और आज के जमाने में कई खरबों रुपयों की लागत लगने के बाद में कई सैकड़ों लोगों की सहायता से, कई सैकड़ों पुरोहितों की सहायता से कई साल लगेंगे उसको पूरा करने में, एक अश्वमेध यज्ञ करने में। वो केवल आपको इस महीने में किसी दूसरे के लिए दीप जलाकर देंगे ना, ऐसे जलाकर हाथ में मंदिर में होता है ना, खड़ा आदमी खड़ा होता है वो आपको दीप जलाकर देता है, उसको हर एक दीप जलाने के बाद में एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। आप सोचिए इतना महिमा है। तो मैं कहते जाऊंगा, इसमें कोई अनगिनत बातें हैं, समझने की बात यह है अपने को प्रैक्टिकली कि आप लोगों को इस महीने में हर रोज कम से कम एक बार भगवान विष्णु को दीपक अर्पण करना है, चाहे घर में, अस्पताल में, मंदिर में, यहां गए वहां गए, इस प्रोग्राम में गए, जहां पर भी गए, आपको ये दीप दान करना है। और भक्ति दान का महात्म्य क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको घी में भिगाया हुआ बाती पंडिती के साथ में जलाकर हाथ में दिया जाएगा, आपको केवल उसको 3 बार घुमाना है बस। उतना शक्ति तो आपके अंदर है, भगवान ने दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, ना पंडिती खरीदनी है, ना बाती खरीदनी है, ना घी कौन सा लाया है, वो अच्छी तरह भिगा है कि नहीं भिगा है कि सूखा है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान को भी सामने खड़ा कर दिया है, सुशोभित करके आपके सामने डेकोरेशन भी कर दिया है, तुलसी को रख दिया है, दामोदर जी का चित्रपट लगा दिया है, हाँ सब प्रोग्राम आने ऐलान किया है, प्रसाद का इंतजाम किया है, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, यू हैव टू जस्ट कम टेक द लाइटेड लैम्प, लिट लैम्प जो जलाया हुआ है वो आपको लेना है, केवल आपका जो भाव है, यहाँ का जो भाव है ना, वो भगवान को अर्पण करना है बस, वो केवल आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे विचार से वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने इतना बड़ा दीपक 2 किलो घी लगा के भी किया और आपका मन में कुछ भौतिक वासना है तो फिर उतने बड़े घी के दीपक को भी लाभ मिलेगा, लेकिन वो नहीं होगा जो बात अगर भाव से करेंगे तो। तो इसमें भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या व्यवस्था किया है, पेशेंट के पास भी रथ जाता है, उनको भी रेडीमेड दीपक मिलता है और वो बिस्तर में लेटे लेटे भगवान को दीपक अर्पण करते हैं। ऐसा अनोखा लाभ मुझे देखकर, मैं हम लोग ने इसको व्यवस्था किया है लेकिन मुझे भी देखकर हर साल उसको आश्चर्य होता है, ये क्या कृपा है ये। हाँ अरे मैं तो बीमार होकर, मेरे किसी कर्म की वजह से बीमार होकर यहाँ पड़ा हूँ, अस्पताल में सफरिंग हो रहा है, मेरे सामने जगन्नाथ जी अपने आप आ जाते हैं, वो कोई बोलता है ये लो, ये कार्तिक महीना है, ये दीपक लो, इसको क्या करना है, क्या करना है इसको, इसको भगवान को अर्पण करना है। वो उसके हाथ पकड़ के उसको अर्पण करवाते हैं, फिर उसको हाथ से लेकर भगवान को दिखाते हैं, भगवान के चरणों में रखते हैं उसको। तो बीमार पड़ के यहां पर आना भी कितना भाग्य की बात है। बहुत लोग कहते हैं अच्छा वो बीमार हो गए और भक्ति विधान में आए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अरे मेरे पिताजी का देहांत हो गया भक्ति विधान में, मेरे माताजी का देहांत हो गया, मेरे बेटे का देहांत हो गया, लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि वो भक्ति विधान में उसका शरीर छूटा, बहुत अच्छी हो गया। वी आर हैप्पी दैट माई फादर पास्ट अवे इन भक्ति विधान हॉस्पिटल, आई एम वेरी अनहैप्पी जो वो गुजर गए, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ पर गुजरे ये उनका परम भाग्य का लक्षण था, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी ना क्या कहते हैं ना, अकल्पनीय, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, ऐसी कृपा इस अस्पताल में उपलब्ध है। हम लोग बाजा के बरसाना में कैंप करते हैं लेकिन बरसाने की राधा रानी भी अस्पताल में उपलब्ध है, क्योंकि बरसाना क्या चीज़ है, जहाँ पर सब लोग प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, वही बरसाना वृंदावन है। और यहां पर अगर प्रेम से भगवान की सेवा हो रही तो यहां पर राधा रानी और कृष्ण सभी उपस्थित है यहां पर, दे आर अवेलेबल हियर, देयर मर्सीज अवेलेबल। तो ये दीपदान है, ये आप सब लोगों को करना है और विशेष रूप से दूसरों को करने के लिए प्रवृत्त करना है। प्लीज टेल अदर्स, प्लीज कम। 2 बजे क्यों रखा है? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट 2 बजे खत्म होती है, 2:15 में चेंज करके नीचे आते हैं, जाने के पहले दीप दान करके जाना। 5 बजे रखा है जनरल शिफ्ट जो है 9:00, 5:00, वो 5 बजे जाते हैं पंच करके, आके भगवान के मंदिर में दीप दान करके जाना। इतनी कृपा यहां पर उपस्थित है, हर साल अपने आप ऑटोमेटिक होती रहती हो। तो आप लोगों को प्रेरणा देनी है, लोगों को नॉलेज देना है, उनको इंस्पायर करना है कि प्लीज कम एंड ऑफर लैंप ओवर हियर। दूसरा बात है व्रत की। तो व्रत का ऐसा है कि इस महीने में व्रत करने का बड़ा महात्म्य है। व्रत कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का व्रत ऐसा होता है कि हम लोग मीठा छोड़ देंगे, तली हुई चीज छोड़ देंगे, जो पसंद है उसको छोड़ देंगे। और एक चीज है कि मैं इस महीने में रोज एक भगवद्गीता का श्लोक पढ़ूंगा, रोज एक भागवत का श्लोक पढ़ूंगा, रोज भगवान का दर्शन करूंगा, हर रोज एवरीडे आई विल गो टू टेम्पल एंड टेक दर्शन, या तो रोज मैं मंदिर में जाकर भगवान को दीप अर्पण करूंगा। इस प्रकार के आध्यात्मिक व्रत लेने से ज्यादा लाभ होता है। व्रत का एक ऐसा एक गाइडलाइन है कि व्रत कभी भी कठोर व्रत लेना नहीं चाहिए, जो आपको करने में बहुत कष्ट होगा और न करने से बहुत दुख होगा और आप दुखी हो जाएंगे, ऐसा कठोर व्रत नहीं लेना चाहिए। व्रत को ऐसा सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको बहुत चॉइस है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। जैसे मैंने आपको 2-4 उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है उसके, लेकिन आध्यात्मिक व्रत ऐसा लीजिए जो आप रोज कर पाएंगे, जो वादा किया है वो एंड तक 30 डेज तक पूरा कर पाएंगे। ये व्रत को पूरा करने से एक बार एक साल में जीवन भर में अगर एक व्रत करेंगे आप, तो आपको भगवत धाम में ले जाने के लिए समर्थ है वो। इट इज सो पावरफुल। तो क्यों ना हम मनुष्य जीवन में इतना सा कष्ट करके अपने जीवन को उद्धार करें। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस महीने में गृहस्थों को भी विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया गया है। इस महीने में मन जो है वो कृष्ण के अंदर, भगवान के अंदर एकाग्र करना है। यू टू कॉन्सेंट्रेट, एब्सॉर्ब, मेडिटेट ऑन द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, श्रवण से, कीर्तन से, सेवा करने से। तो कई प्रकार के व्रत है। इसमें एक विशेष व्रत वो है, वो तीर्थ यात्रा करने का। भक्त लोग इसमें तीर्थ यात्रा करते हैं। आप देखिए वृंदावन पूरा फुल हो गया, अभी जगन्नाथपुरी फुल, मायापुर फुल, जहां पर भी धाम है, नासिक है, द्वारका है, डाकोर है, सब जगह भी फुल है। किधर रूम नहीं मिलता है, कुछ नहीं, इतनी भरी भरी संख्या में, लाखों की संख्या में, कई हजारों संख्या लोगों की एक एक यात्रा आ रही है। एक यात्रा जो है 20,000 लोग चल रहे हैं उसके अंदर, एक में 7,000 लोग चल रहे हैं, हमारी यात्रा जाएगी उसमें 6,000 लोग जाएंगे। ऐसे सब जगह लोगों की भीड़ होगी क्योंकि प्रचुर मात्रा में कृपा उपलब्ध है। और इस महीने में जो भी कोई जप करेगा, मुंबई में करेगा और कहीं भी करेगा, उसको 1,000 गुना अधिक लाभ मिलेगा। आप बोलेंगे हरे कृष्णा, तो वह 1,000 बार हरे कृष्णा बोलने की तरह है। और अगर वही हरे कृष्णा इस महीने में आप श्री वृंदावन में या जगन्नाथपुर या मायापुर में लेंगे, तो 1,000 गुणित 1,00,000, क्योंकि वैसे भी धाम में जप करने से 1,00,000 बार प्राप्ति होती है उसका लाभ की। तो कार्तिक महीने में 1,00,000 बार मिलता ही है, उसको 1,000 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 10 lakhs और 10 crores, 1 lakh into 1,000 कितना हो गया, 10 crore टाइम्स, 10 crore गुना आपको केवल एक भगवान का नाम लेने से लाभ होगा। इतना भगवान बेनिफिट दे रहे हैं तो हम लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं, वाई आर वी सो माइजरली। को पुकारने में कष्ट नहीं होना चाहिए। और धाम में जाकर हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, सच्चे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, थोड़ी सा तपस्या व्रत रखना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ये सारे चीज़ धाम में अपने आप हो जाते हैं जब जाते हैं हम लोग। और दीप दान करना चाहिए भगवान का भजन गाते हुए। तो ये हमारी तीर्थ यात्रा करेंगे तो भी आपका व्रत हो जाता है। ये महीने में खास करके जो भौतिक हमारा वेग है कि हमको ये प्राप्त करना है, इतना इनकम होना चाहिए, अभी ये महीने में इतना एसेट होना चाहिए, इतना एफडी में जमा होना चाहिए, हमारा एक गोल होते लाइफ में, वो सब थोड़ा बाजू में रखना चाहिए और आध्यात्मिक धन बटोरने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। वी हैव टू एक्ट इन सच अ वे दैट इन दिस मंथ वी अर्न ओनली स्पिरिचुअल वेल्थ, क्योंकि ये जो धन आप कमाएंगे इस महीने में वो आपको, जैसे कथा में देखा ना आपने, साथ में कौन जाएगा, धन दौलत तो सबसे पहले छोड़ के दूसरे के नाम पे हो जाएगी। साधु लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जीते हुए वो धन इकट्ठा करने में मत लगना जो आपके साथ में कभी भी आने वाला नहीं है। हमको जरूरत है उसकी जीवन चलाने के लिए, उतना मेहनत करना है, लेकिन जमा करके रखेंगे तो वो एक्यूमुलेट एंड देन प्यूट्रीफाई, मतलब आप उसको जमा करते जाएंगे या भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो सड़ जाएगा, और वो सड़कर आपकी चेतना को भी सड़ाएगा, आपके हृदय को आत्मा को भी दूषित करेगा। वो भगवान की सेवा में जो नहीं इकट्ठा करके रखा है, जिसका भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा रहा है, वो धन कभी भी चुप नहीं बैठता है, वो हमारी आत्मा को दूषित करता है, आत्मा में द्वेष, अहंकार, भय, ये अनेक चीजें पैदा करता है। इसलिए धन जो है ना बहुत डेंजरस चीज है, उसको जब भी आप इकट्ठा करेंगे, जब भी कमाएंगे, उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्लानिंग भी साथ में होना चाहिए। और दूसरा आदेश दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में वो धन इकट्ठा करना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। तो लास्ट में क्या बताया, वो जो कुरूप दिखने वाली पत्नी है वो हमको अच्छी लगती नहीं है, कभी उसको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारे साथ में आएगी। आत्मा के स्तर पर जो धन कमाया है वो आत्मा के साथ जाएगा, शरीर के स्तर पर जो जमा किया है शरीर के नष्ट होने के साथ आपके साथ नष्ट हो जाएगा, आपके हिसाब में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको बार बार, या मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, सेम थिंग सेम ओल्ड थिंग, आप कह सकते हो वही घिसी पिटी बातें बताई जा रही है, लेकिन वो घिसी पिटी बातें आध्यात्मिक जब होती है तो उसमें बहुत शक्ति होती है, तो दोबारा रिवाइज करना जरूरी होता है कि हमारा गोल क्या है। हर हम शादी के सालगिरह में क्या तय करते हैं कि हमने शादी क्यों किया था, शादी का पर्पज क्या था, अभी हम कहां पर है, क्या सुधार करना है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, वाई वी आर हियर। वैसे भक्तिवृंदन हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था 1998 में, किस उद्देश्य से किया था, हर बार उसको रिवाइज करते हैं। हाँ, हमारी पटरी अगर फसल फिसल गई है तो पटरी को उस लाइन पर लेके आते हैं ताकि हम दोबारा अपने आप को फोकस कर सकें। इसीलिए ये दिव्य मंत्र जो है इसमें अनंत लाभ है, तो आप सब लोगों को ये बहुत सारे लाभ यहाँ उपलब्ध कर दिए गए हैं। और भक्त लोग यात्रा में जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो यात्रा का चिंतन करना, किसी लोगों को सुनना है तो स्पीकर्स में से यहाँ पर लेक्चर्स यात्रा के सुन सकते हैं आप, महाराज जी के द्वारा दिए गए। हर बुधवार को आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बुधवार को जागृति विशेष करके, अनाउंस नहीं भी की होगी तो ये जागृति विशेष जागृति होगी क्योंकि कार्तिक महीने की जागृति है। आप आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, दीपदान अभी इस प्रवचन के बाद में होगा उसमें हर बुधवार को भाग लीजिए, हर दोपहर को, हर शाम को आइए जब समय मिलेगा, परिवार के लोगों को लेके आइए, लोगों को महात्म्य बताइए, जितने लोगों को आप जोड़ सकते भगवान के साथ जोड़ सकते हो उतने लोगों को आप जोड़िए। एक है खुद करना और एक दूसरों को बताना, भगवान दूसरों को बताने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में बताया गया है कि जो भी मेरी महिमा किसी और को बताएगा उससे अधिक प्रिय व्यक्ति मेरे जीवन में कोई नहीं होगा, नोबडी विल बी मोर डियर एवर नाउ एंड द फ्यूचर, जो मेरे बारे में दूसरे को बताएगा और दूसरे को मेरे बारे संपर्क कराएगा, मेरी सेवा में लगाएगा, मेरी चेतना में लगाएगा, वो मुझसे मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय होगा। ये भगवान ने सब बता के रखा हुआ है, तो आप लोग खुद भी लीजिए और लोगों की भी लीजिए। और भक्तिवेदांत अस्पताल में जो कृपा उपलब्ध है वो सबको उपलब्ध कराइए। हाँ, आप खुद लीजिए, जो नहीं ले रहे उनको दिलाइए, और खुद के साथ साथ में बाकी लोगों को जो भी आपके संपर्क में है वो सबको भी दीजिए। तभी हमारा भक्तिवेदांत अस्पताल, ये अनोखा अस्पताल शुरू करने का जो प्रयोजन है वो सफल होगा। प्रभात जागृति में नहीं आ सकते हो तो संध्या जागृति में आइए, उसमें नहीं आ सकते हो तो जो वीकली कार्यक्रम हॉस्पिटल में होते हैं, जो सुबह की प्रार्थना होती है जिसमें भागवतम सुनने को मिलता है, उसमें आ जाइए, दीपदान में आ जाइए, मंदिर में जाइए, वहां पर अर्पण कीजिए, जो कुछ कथा चल रही है वो सुनिए, एक अच्छा व्रत है उसके अंदर, रोज एक भगवान की कहानी पढ़कर सो जाना है, वेरी ब्यूटीफुल व्रत। भगवान की कथा सुनने से हमारे भाग्य का उदय होता है, जन्म जन्म के संचित नष्ट हो जाते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम और रति उत्पन्न होती है, जीवन धन्य हो जाता है, दुख दूर भागते हैं और आनंद का उदय होता है। इतनी शक्ति है भगवान के अंदर, भगवान के संबंधित हर एक वस्तु में इतनी शक्ति है, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, ये हर चीज में ऐसी अद्भुत शक्ति है, और इस महीने में आपको 1000 गुना गुणित होकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और क्या कहें, कार्तिक मास का महिमा तो अगाध है, उसको और 4 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए आपको सबको विनती करते हैं कि विशेष रूप से हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है, बहुत कीमती जीवन है, जिस एक ही जीवन में केवल भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो ये जीवन में ऐसे समय आते हैं तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। द टाइम्स ऑल्सो एंड, अभी एक आज कार्तिक शुरू हुआ है, एक दिन समाप्ति हो जाएगा, इसलिए वो समाप्त होने के पहले उसमें जितना बटोरना है उतना बटोर लीजिए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सब लोग एक बार, क्योंकि 1000 बार लाभ है इसका। सब लोग बड़े ध्यान से हाथ जोड़कर, हाथ ऊपर उठाकर, जैसे भी आंख बंद करके, जैसे भी आपको लगता है वैसे एक बार भगवान के नाम का बड़े प्रेम से उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हरे कृष्णा। अभी दीप दान का कार्यक्रम होगा, पेपर सबके लिए है क्या? वो रिकॉर्डिंग बंद करो अभी। सब लोगों को पेपर मिलेंगे, कुछ कुछ लोग बांट लेना उसको। और ये जब हम गा रहे हैं भजन,